ओम शांति। आज का जो विषय है साइलेंस की शक्ति, और मैं समझती हूं कि यह विषय क्लास का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। बाबा ने हमेशा जब भी साइलेंस की शक्ति पर कोई बात कही तो उस समय बाबा ने हमें यही इशारा दिया कि अंतिम समय का पेपर क्रॉस करने के लिए जितनी अपने अंदर साइलेंस की शक्ति होगी तो उस पेपर को क्रॉस करना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन अंतिम समय में जो परिस्थितियां आएगी साइलेंस की शक्ति के अभ्यासी उन परिस्थितियों का शिकार नहीं बनेंगे, लेकिन वो परिस्थिति भी जैसे नतमस्तक हो करके झुक जाएगी आपके सामने, आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। इतने बाबा ने इसके फायदे बताए हैं साइलेंस की शक्ति के, जिसको कहे एक एक सिद्धियां बाबा ने बताई है साइलेंस की शक्ति की, सिद्धियां क्या क्या हो सकती है। तो बाबा ने कहा कि उस समय अंतिम समय में या वैसे भी कोई ऐसी क्रोध अग्नि वाली आत्मा आपके सामने आ जाएगी, आपके स्वरूप की शीतलता उसकी क्रोध अग्नि को भी शांत करने के लिए निमित्त बन जाएगी। ये पहली सिद्धि है। दूसरी सिद्धि बाबा ने बताई कि कोई भी प्रकार के बंधन हो तो साइलेंस की शक्ति से वो बंधन संबंध में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी सिद्धि बाबा ने बताई थी। तीसरी सिद्धि बाबा ने कही, कैसा भी कर्म भोग आ जाए अंतिम समय में, परंतु वो कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं करा सकता है। अगर आप साइलेंस की शक्ति में हैं, उस स्वरूप में हैं, तो वो भोगना आपको दुख दर्द का अनुभव नहीं करा सकती है। लेकिन शरीर से सहज डिटैच होने में मदद कर देंगी। ये भी एक प्रत्यक्ष सिद्धि है। चौथी बात बाबा ने कही कि ये साइलेंस की शक्ति कितने भी कठिन से कठिन या कड़े से कड़े संस्कार हो, पुराने, उन संस्कारों को मोल्ड करके परिवर्तन करने की क्षमता देता है। इतनी पावरफुल ये शक्ति है साइलेंस, जिसके लिए बाबा कई बार हम बच्चों को तुलना के रूप में कहते रहे कि बच्चे, जैसे दुनिया के अंदर आज साइंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती, असंभव को संभव कर सकती है, इसी तरह साइलेंस की शक्ति भी इतनी पावरफुल है जो असंभव को संभव करा सकती है, कर देती है। अंतिम समय में कई आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेगी, भटकती होगी, लेकिन साइलेंस की शक्ति वाली आत्मा के सामने नहीं आ पाएंगी। और ही उसको शायद मुक्ति का गेट प्राप्त हो जाए आपकी साइलेंस की शक्ति से। तो विपरीत परिस्थितियों को बदल सकती है, यही साइलेंस की शक्ति है। तो इसीलिए चाहे परिस्थिति हो, संबंध हो, कर्म भोग हो, मन के अनेक व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में शांत कर देती है और आनंद की स्थिति में ले जाती है। हमारी साइलेंस की शक्ति कोई डेड साइलेंस वाली साइलेंस नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा कि हमारी साइलेंस की शक्ति स्वीट साइलेंस की है। जिस साइलेंस की अवस्था में निरंतर रहना चाहते हैं, उस अनुभव में फ्लो होना चाहते हैं, प्रवाहित होना चाहते हैं, ऐसी स्वीट साइलेंस है। लेकिन ये अनुभव किसको होंगे? इसका अनुभव, क्योंकि बाबा ने एक बार कहा था कि कई लोग सोचते हैं बहुत पावरफुल योग करना है, प्लानिंग करते हैं, सारा उस हिसाब से तैयारी भी कर लेते हैं, वैसे म्यूजिक सिलेक्ट कर लेंगे, वैसे आदि अंत में गाने सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब बैठते हैं तो जो थर्ड फ्लोर पर शांति धाम में जाना चाहते हैं लेकिन वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं, या सूक्ष्म वतन में ही अटक जाते हैं या स्थूल वतन में ही अटक जाते हैं, तो क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि उसके भी कुछ पावरफुल आधार को हो या धारणाएं हैं जो हमें उस स्वीट साइलेंस की स्टेज में सहज ले जाएगा। बाह्य मौन की बात नहीं है, लेकिन सबसे पहला आधार है, पुरुषार्थ है उस अवस्था में जाने के लिए, वो है अंतर्मुखता या मन का मौन। जितनी हमारी सारे दिन की दिनचर्या में अंतर्मुखी स्टेज होगी, जितना शीतल स्वरूप हमारा दिन भर में व्यवहार में संबंधों में शीतलता का स्वरूप रहेगा, अंतर्मुखी। दादी गुलजार की बात हमेशा याद आती है कि दादी कहती है बाबा अंतर्मुखी जब कहता है तो अंतर्मुखता का भाव क्या है बाबा का? क्योंकि मुख के ऊपर अधिक इंद्रियां हैं, मन भी है, आंखें भी है, मुख भी है, कान भी है, जो मेन मन को भटकाने वाली या एकाग्र करने वाली जो इंद्रियां हैं वो सारी मुख पर है। इसलिए जब अंतर्मुखी कहते हैं तो माना ये पांचों इंद्रियों को जैसे अंदर की तरफ टर्न कर लेना और बाह्य दृश्य देखते हुए न देखना, बाह्य बातें सुनते हुए न सुनना, फालतू बातों में नहीं आना और व्यर्थ संकल्पों की परहेज करना, ये जैसे आधार बन जाता है उस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव करने के लिए। इसलिए बाबा कहते अंतर्मुखी सदा सुखी, भीतर ले जाए अपने आप को। भीतर जितना अंदर में हम चाहे ज्ञान की बातों का मनन करें या जितना मन को शांत रखे, शांति का मतलब कोई विचारों को सप्रेस करने की बात नहीं है, लेकिन मन को शांत रखना माना व्यर्थ संकल्पों से परे करना। इसलिए बाबा के पिछले दो सीजन में हमने सुनी जो मुरलियां, जिसमें बाबा ने बार बार ये अटेंशन हमारा खिंचवाया कि बच्चे व्यर्थ संकल्पों का परहेज करो। व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है, व्यर्थ से मुक्त रहो। यानी अब समय के अनुसार ये व्यर्थ की बातों से अगर हम परे नहीं होंगे तो वही बातें हमारी स्थिति को बार बार नीचे खींच के लाएगी, हमें ऊपर की ओर जाने नहीं देंगे। तो ये सर्वप्रथम धारणा हो जाती है अंतर्मुखता वाली और व्यर्थ से स्वयं को मुक्त रखने के लिए। अध्ययन करें ज्ञान की बातों का। मुझे याद आता है एक अनुभव मेरा कि जब मैं सेंटर पर थी, उस वक्त मुझे एक ऐसे स्थान पर भेजा गया था कि जहां ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनना नहीं चाहते थे कोई। काफी डिससर्विस हुई होगी या जो भी हुआ होगा, मुझे कोई हिस्ट्री पता नहीं थी उसकी और ना आज पता है उसकी बातें, लेकिन मुझे वहां 3 महीने के लिए भेजा गया था और कहा आप सेवा करो। मैंने हर मंदिर के अंदर, हर मंदिर के आंगन में प्रदर्शनी किया, शिविर के फॉर्म भरवाए, लेकिन प्रदर्शनी के बाद शिविर में कोई नहीं आता था, कोई आता ही नहीं था। हर मंदिर, कोई मंदिर छोड़ा नहीं उस गांव का, हर स्कूल, वेकेशन का टाइम या संडे, सैटरडे संडे होता तो हर स्कूल के आंगन में इस तरह अलग अलग एरिया के हिसाब से मैंने सारा कवर किया। लेकिन लास्ट में जब देखती थी शिविर के लिए कोई आता ही नहीं था, कोर्स के लिए भी कोई नहीं आता था, तो मन के अंदर थोड़ी निराशा तो आएगी कि भाई इतना मेहनत करने के बाद भी कोई नहीं आता है, ऐसी क्या बात होगी। फिर अमृत वेले जब मैं योग करने के लिए बैठी, मैंने बाबा से जैसे रूहान किया कि बाबा ऐसा क्यों होता है कि एक स्टूडेंट तो आए, इतना करने के बाद भी कोई आता ही नहीं है, कोर्स के लिए भी एक आत्मा नहीं आती है। तो उस समय मुझे बाबा ने ऐसा अनुभव कराया कि बच्चे पहले इस भूमि को योगदान दो, साइलेंस की शक्ति से उसको सींचो, ये जल डालो, फिर वो फल देंगी या फिर उसका रिजल्ट दिखाई देगा। अब कोई आता ही नहीं था, जब सारा दिन अकेले होते थे कोई आता ही नहीं था, तो क्या करते? हमारे साथ एक माता जी को रखा था, तो सारा दिन क्या करते? तो कोई और सेवा, तो पर्सनल सेवा जितनी हो गई सो हो गई। उसके बाद सारा दिन दूसरा कोई होता तो शायद उदास हो जाए या उनके संकल्प चले। लेकिन उस समय मैंने सोचा कि बाबा ने जब ये कहा कि इस धरनी को पहले सींचना है, योग की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से उसको सींचना है, और ये अच्छा मौका है, तो मैंने अपना 8 घंटे का योग का चार्ट बनाया। 2:30 बजे सुबह उठना, 2:30 बजे उठ करके 5 बजे तक योग करना, फिर योग से उठ करके स्नान पानी करके कोई ना कोई अव्यक्त मुरली पढ़ना, ताकि और व्यर्थ संकल्प आने की मार्जिन न रहे, और फिर वो मुरली के हिसाब से वापस प्रयोग करना, फिर मुरली सुनने के बाद जैसे मुरली टाइम जैसे हो जाता उस समय आधा घंटा योग करना 6:30 से 7, फिर मुरली सुनना, मुरली सुनने के बाद फिर हल्का नाश्ता कुछ ले लेना, दूध या फल या ऐसा कुछ, फिर वापस कोई मुरली पढ़ना, फिर योग में बैठना। इस तरह कोई ना कोई अव्यक्त मुरली योग, अव्यक्त मुरली योग, ऐसे करके मैंने, और 9 बजे रात को मुरली पढ़ के सो जाना, और मुरली पढ़ करके 9 बजे सो जाती थी, 2:30 बजे फिर उठ जाती थी। 8 घंटे का ऐसा चार्ट बनाया, जैसे पूरी भूमि को वो साइलेंस का, शक्ति का दान देती रही। बहुत सुंदर अनुभव हुआ मुझे, पहली बार माना ब्राह्मण जीवन में क्या एक योग की स्टेज थी। सारा दिन उस माताजी से भी, बड़ी माताजी थी, उससे बात भी क्या करे सारा दिन, तो वैसे ही मुख का भी मौन हो जाता था, मन का भी मौन था, और माताजी भी शांति प्रिय आत्मा थी, वो ज्यादा बोलती नहीं थी। उसको मैंने छुट्टी दे दी, आपको जो खाना बनाना हो, जो खाने की दिल हो, बाबा को खिलाने की दिल हो, आप बनाना, भोग लगाना और खाना, है ना। और मैं अपने इस पुरुषार्थ के अंदर वो समय जो मुझे मिला था, 15 दिन मैंने ये प्रयोग किया, और 15 दिन के बाद जैसे झुंड के झुंड आने लगे, और जिस तरह से झुंड के झुंड आए, और मैंने महसूस किया कि सचमुच बाबा जो कहता है, मुरलियों में जो बातें सुनाई है, जब उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखे हम, योग का दूसरा नाम तो प्रयोग होता है, अगर मैंने इस बातों का प्रयोग ही नहीं किया तो मुझे उसकी सिद्धि का अनुभव नहीं हो सकता है। और इतना मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जो सोचती थी 15 दिन के बाद, मैं जो सोचती थी वो प्रत्यक्ष हो जाता था, मैं जो मुख से बोलती थी वो जैसे साकार हो जाता था। एक जैसे संकल्प की सिद्धि, वाणी की सिद्धि, हर बात की, मन के अंदर कोई भावना उत्पन्न हुई वो सिद्ध हो जाती थी। ऐसी सिद्धि का अनुभव जब 15 दिन ये अनुभव किया, उससे मुझे खुद अनुभव हुआ, और ऐसा समय दोबारा नहीं मिला कि 8 घंटा मैं कर सकूं। उसके बाद मैंने काफी प्रयत्न किए, लेकिन 6 घंटे तक पहुंच पाती थी, 8 घंटा नहीं हो पाता था। वो 15 दिन ही मैंने 8 घंटा किया था, और उस समय सचमुच कोई व्यर्थ संकल्प नहीं था, कोई व्यर्थ नहीं अंदर में। मुरली जैसे जैसे पढ़ती थी तो उसी चीज का जैसे अनुभव करने की इच्छा अंदर होती थी। मुरली भी खास चुन चुन के निकालती थी कि बाबा की, जैसे अमृत वेले के ऊपर मुरलियां होती थी, या ऐसी मुरलियां, पॉइंट्स लिखती थी, और उसके हिसाब से उस स्थिति का अनुभव करना, सारा दिन उसका प्रयोग करना, जैसे उस स्टेज में चले जाना, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। भावार्थ ये कि बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं कि व्यर्थ से अपने आप को मुक्त रखो, सचमुच जितना व्यर्थ से मुक्त रखेंगे बातों से सुनने से, उतना ही हम अपनी मन की अवस्था, नहीं तो ब्रह्मा कुमारी जीवन बनने के बाद भी अगर हमने कोई सिद्धि का अनुभव नहीं किया तो किया क्या, फायदा क्या? क्या हमारा जीवन भी उसी तरह है जैसे दूसरे दुनिया की बहनें या कुमारियां बिता करके पूरा कर देती है, 8 घंटा नौकरी करती, हमने 8 घंटा सेवा कर लिया, खाया पिया सोया, कुछ इधर बात कर लिया, कुछ उधर बात कर लिया, कुछ इससे बात कर लिया, उससे बात कर लिया, क्या अंतिम समय हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ब्रह्मा कुमारी जीवन का, उस सेटिस्फेक्शन को हम अनुभव कर पाएंगे? या उस समय अफसोस होगा, पश्चाताप होगा कि क्या किया हमने? दूसरी धारणा उसके लिए जो महसूस किया कि एक बेहद की वैराग्य वृत्ति, कि जितनी अंदर से बेहद की एक वैराग्य वृत्ति होती है उतना जैसे उस अनुभव में ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है। नहीं तो अनेक प्रकार के दुनिया के अंदर आकर्षण है और वो आकर्षण अगर मेरी बुद्धि को इधर उधर खींचते ही रहे, एक अंदर से बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है तो मैं इस स्वीट साइलेंस का अनुभव कभी नहीं कर पाऊंगी। तीसरी जो मुख्य धारणा है उसके लिए जो बाबा हमको पिछले कई सालों से ये प्रैक्टिस भी करा रहे हैं और कई बार मुरली में इन बातों को बाबा ने अंडरलाइन करवाया है, वो है फुल स्टॉप। सेकंड में फुल स्टॉप लगा दें, बातें आएंगी आपके सामने। कई बार कई लोग कहते हैं हमारे सामने बातें आती है उसमें हमारा क्या दोष है, बातें आएंगी लेकिन सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, जितना ये अभ्यास, और ये अभ्यास नेचुरल हो उसके लिए जो बाबा पिछले कई सालों से 3-4 सालों से तो लगातार ही बाबा बीच बीच में या मुरली के बाद बाबा कहते थे अब 2 मिनट में साइलेंस में चले जाओ, शांति में चले जाओ, या विभिन्न ड्रिल बाबा कराते रहे हमें समय प्रति समय, हर मुरली के बाद या बीच बीच में भी बाबा ने मुरली के बीच बीच में भी ड्रिल कराई। ये प्रैक्टिस बाबा हमको कराते रहे और क्योंकि बाबा का हमसे इतना प्यार है कि बाबा चाहते हैं कि बच्चे मेरे समान बन जाए और वो बातों में फंस न जाए, वो बातों के शिकार न बन जाए, उसके लिए बाबा का इतना रहम दिल स्वरूप कि बाबा हम बच्चों को ये ड्रिल कराते हुए एक सेकंड में डीप साइलेंस में चले जाओ। और ये डीप साइलेंस माना क्या, तो जैसे कई बार आपने तैरक देखे होंगे, एक छोटे से वो कुएं में तैरने वाले होते हैं, एक तालाब में तैरने वाले होते हैं, एक नदी में तैरने वाले होते हैं, एक समुद्र में तैरने वाले होते हैं। जो समुद्र में तैरने वाले होते हैं ना, उनको आप कुएं में कहो तैरो, नहीं मेरे साइज का भी नहीं है, ये इतना उसको स्पेस चाहिए तैरने के लिए। लेकिन समुद्र में तैरने वाले भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है जो लहरों के साथ खेलने वाले होते हैं, सर्फिंग करने वाले, जिसको आज की दुनिया में कहते हैं सर्फिंग करते, ऊपर लहरों के साथ उनको टकराना, लहरों के बीच में चले जाना, ये अच्छा लगता है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो है वो जैसे नाव में या शिप में अंदर जाते हैं, दूर जाते हैं, और जब गहराई मिल जाती है उनको, बहुत गहरा समुद्र जब आ जाता है, तब अंदर छलांग लगाते हैं और नीचे एकदम चले जाते हैं। और जो नीचे जाते हैं, एकदम नीचे चले गए, इतना शांत पानी होता है उस वक्त, और उस समय वो शांति का जो एक धारा होती है, एक प्रकार की, एक जैसे दूसरी दुनिया में चले गए ऐसा महसूस करते हैं। डाइविंग जब करते हैं तो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और उस दुनिया को एक्सप्लोर करने लगते हैं, और कितने घंटे नीचे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है उनको। जब ऊपर से कोई अलार्म देता है कि अभी इतने घंटे हो गए ऊपर आओ, तब उनको होश आता है, अच्छा इतने घंटे हो गए, तब ऊपर आते हैं। थकावट नहीं होती है, वो लहरों के साथ टकराने वाले बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो नीचे डाइविंग करके नीचे जाने वाले होते हैं, एक्सप्लोर करने में एक नई जैसे चीजें खोज रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो उसमें कितना वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता है ना? ऐसी वो दुनिया नीचे की होती है। ठीक इसी तरह स्वीट साइलेंस माना हो जाना, समा जाना, चले जाना अंदर भीतर एकदम, और उस स्वरूप में ऐसे स्थित हो जाए, ऐसा डाइव कर दे। हाँ, लहरों से खेलना माना विचार सागर मंथन किया, रूहान किया, ये है लहरों से खेलते रहना, जैसे सर्फिंग करना। तो इसी तरह योग में भी कई लोग सर्फिंग करते रहते हैं, कुछ अच्छे अच्छे विचार, क्रिएटिव विचार आते हैं, उसमें सर्फिंग करते हैं, सूक्ष्म वतन में जाकर के अव्यक्त बाप दादा के साथ कुछ रूहान किया, कुछ बातें किया, ये सर्फिंग करते हैं। लेकिन जैसे परम धाम में चले जाते हैं, उस समय जैसे व्यक्ति वो समुद्र में नीचे चला गया, तो उस पानी के अंदर उसको अपनी बॉडी का वेट भी फील नहीं होता है, वेटलेस हो जाते हैं। जैसे आपने महसूस किया होगा, कभी आपने अगर कुएं से पानी निकाला हो ना, तो बाल्टी जैसे ही कुएं में नीचे चली जाती है, एकदम हल्की है, उसका कोई वजन नहीं, खींचो तो वजन महसूस होता है, लेकिन नीचे जब जाती है तो वजन नहीं होता है। ठीक इसी तरह वो जब डाइविंग करने वाले होते हैं, उस समय उनको अपनी बॉडी का वेट भी पता नहीं चलता है, इतने लाइट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जब बाबा की याद में भी हम ऐसे डाइव कर दें, एकदम हो जाए, समा जाए, जैसे दिव्य लोक के अंदर परम धाम में जब जाते हैं, चारों तरफ जैसे एक दिव्य प्रकाश की ही आभा फैली हुई है, और उसमें कोई वेट नहीं, जैसे वेटलेस होकर के जैसे फ्लोट कर रहे हैं, और उस एक समय में आकर के जब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जब अशरीरी बन गए, तो जैसे शांति के सागर से सारी शक्तियों को, साइलेंस पावर को अपने अंदर भर देते हैं। संकल्पों को रोकना नहीं पड़ता है, लेकिन एक बहुत सुंदर आनंद का अनुभव होता है, जैसे खुशी होती है बाबा के साथ में, परमात्मा के उस बीज के साथ में, उसके सानिध्य में जैसे बैठे हुए, और उस समय जैसे एम्पावर्ड फील करते हैं, ऐसे सशक्त महसूस करते हैं, लेकिन एकदम हल्कापन, और जैसे लगता है कि बस मैं भी एकदम पावरफुल बीज रूप में हूँ, शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाते हैं, कोई संकल्प नहीं, एक अनुभव में है। और उस अनुभव में जब होते हैं तब अंदर में वो शक्ति को भरते जाते हैं और इतने शक्तिशाली बनने लगते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि जब इस अवस्था में चले जाते हैं, भले कुछ घड़ियों के लिए ही क्यों ना हो, कुछ सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो, कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उसी में ही विकर्म दग्ध होने का अनुभव होता है, ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जैसे विकर्म दग्ध होने लगे हैं, ऐसी महसूसता और एकदम लाइट, जैसे लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, जैसे चारों ओर अपने महसूस करेंगे। परसों जब दादी के पास बैठे थे, गुलजार दादी के पास में, तो दादी से बातचीत करते करते दादी ने कहा भी ऐसा पुरुषार्थ करो, बस लाइट ही लाइट महसूस हो, जैसे कुछ नहीं, लाइट ही लाइट है। चलते हैं तो भी ऐसे महसूस करो, लाइट ही लाइट है। यही पुरुषार्थ अभी करना है, तब समय को इतना समीप ले आएंगे हम, और उस समय जो महसूस पाऊंगी जैसे सर्व प्राप्ति संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न, ऐसा महसूस करेंगे। तो जब परमधाम के अंदर हम पहुंच जाते, फ्लोट कर रहे हैं, और एक क्षण आता है जब वो भी फ्लोट करना भी बंद और उस अवस्था में स्थिर हो जाते हैं, साइलेंस, स्वीट साइलेंस, और बाबा से जैसे सब शक्तियों को प्राप्त करने लगते हैं, अनुभव में जैसे कितना समय बीत गया पता ही नहीं चलता है, और तब जैसे अंदर से भरपूरता का अनुभव कर पाएंगे। तो ये है साइलेंस पावर, प्रैक्टिकल उसकी महसूसता, उसकी अनुभूति। तो अब का समय अनुसार, खास जब आए हैं बट्टी में और इस अनुभव को अगर नहीं किया तो फायदा क्या होगा। तो इसीलिए बहुत सुंदर, अभी हम सभी थोड़ी देर के अंदर ये अनुभव में अपने आप को ले चलेंगे, एक साथ में मिल करके वो परमधाम के अंदर जाएंगे और उसको महसूस करेंगे। लेकिन जैसे कहा कि कुछ क्षणों के लिए मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से एकदम फ्री, जैसे झटक देना, सारी बातों को झटक देना और फ्री करके, जैसे वो पतंगे के लिए कहते हैं कि कुकुन में होता है और कुकुन से जब बाहर आता है तो जैसे उसने उसको छोड़ दिया, झटक दिया उस कुकुन को, और फिर जब वो उड़ने लगता है तभी सही रीति से उड़ सकता है। ऐसे ही कई प्रकार की बातें हमारे मन में हो सकती है, कई प्रकार की भावनाएं हमारे मन के अंदर हो सकती है, कई चीजें जैसे खींचने वाला अनुभव करा सकती है, लेकिन उस कुकुन को हमें छोड़ देना है, उसको झटक देना है और अंदर से बाहर निकल आना है। और जब उसके अंदर से बाहर निकल आते हैं तब ऐसा महसूस करेंगे कि फ्री हो गए, हम उड़ सकते हैं, अभी पंख आ गए, काफी संघर्ष कर लिया है ना। वो कहानी तो आप सबको मालूम होगी कि जब एक पतंगा मेहनत कर रहा था उस कुकुन से बाहर निकलने के लिए, बहुत मेहनत करके थक जाता था, फिर छोड़ देता था प्रयास करना, फिर मेहनत करने लगता, फिर छोड़ देता था, थक जाता था। तो एक बच्चा काफी देर से देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है ये पतंगा, तो उस बच्चे ने क्या किया, उस कुकुन को काट दिया ताकि वो निकल सके बाहर सहज रीति से, लेकिन उसके पंख विकसित ही नहीं हुए, उसके पंख में वो मजबूती ही नहीं आई जो उड़ सके, और मर गया। भावार्थ ये कि अब तक हमने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, काफी पुरुषार्थ किया, लेकिन ये जैसे अपने अंदर एक ताकत भरने के लिए किया, अपनी अवस्था को बनाने के लिए मेहनत किया था तो ये मेहनत हमारी व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन अब जैसे उस कुकून को छोड़ करके उड़ने का अनुभव करना है और उस अवस्था में चले जाना है, तो इसलिए ये पतंगे की कहानी, जैसे बाबा कई बार कहते, बाबा भी हमें पतंगे के रूप में देखते हैं, कोई फेरी पहनने वाले, कोई क्षमा पर चलने वाले, कोई समाने वाले। तो इसी तरह अब तक जो हमारा पुरुषार्थ था वो अपने अंदर एक बल भरने का समय था, वो भी जरूरी था, लेकिन अब जैसे सहजता से उसमें से बाहर निकल करके उड़ना है, अब तक तो काफी मजबूती अपने अंदर आ गई है, तो इसीलिए अब उस अभ्यास से हम अपने आप को ले चलते हैं। उसी तरह तो ड्रिल जो बाबा ने कराई, ये प्रैक्टिस हमें कराई है और ये प्रैक्टिस हमें बहुत मदद करती है। इसलिए बाबा ने बार बार कहा मुरलियों में कि बीच बीच में प्रैक्टिस करो, हर घंटे प्रैक्टिस करो। ये अभ्यास जितना करेंगे उतना जैसे मजबूती अंदर आ जाएंगी और अंतिम समय के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे। और जो साइलेंस की शक्ति की सिद्धियां हैं उस सिद्धियों को भी अनुभव कर सकेंगे। तो इसीलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। तो आज ये फुल स्टॉप ऐसा लग जाए, तीन बिंदी के लिए हमेशा बाबा कहते रहे, तो तीन बिंदी को लगा दो और बस उसी स्वरूप में उड़ जाना है। तो अभी हम सभी चलेंगे उस अनुभव में, सूक्ष्म वतन में 2 मिनट के लिए जाएंगे चाहे तो, और फिर उड़ान भरेंगे अपनी परम धाम की ओर। और उसी स्थिति में रहना है और उस स्थिति का अनुभव करना है। सब फ्री होकर के बैठ जाए, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमने पहले ही कहा ये अनुभव की अवस्था है, इसमें क्लास क्या कराएंगे, आप सभी अनुभवी हैं, क्लासेस कराने वाली है, इसलिए क्लास तो नहीं, लेकिन अब चलते हैं उस अनुभव के अंदर।